आश्चर्य है कितना मेरे मन में अज्ञान है। मे हृदय रूढ़म अज्ञानम पश्यत। जब उनको ज्ञान दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तो उल्टे वही बोलने लगते थे, मेरे अज्ञान को देखो। पश्यत, जरा विचार करो मैं कितना अज्ञानी हूं, कितना अज्ञानी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मेरा मन दूषित है। आत्मा मन मन, मेरा मन दूषित है, हृदय दूषित है। तो ऐसे हृदय में धसे हुए मेरे अज्ञान को देखो, क्या मैं इस देह के लिए बहुत अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया, इस देह के लिए। वास्तव में उन्होंने जो युद्ध किया था वो इस देह के लिए नहीं किए थे, तो भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ था। लेकिन अब जब आप ज्ञान में पड़ गए हैं तो सोच रहे हैं कि मैं इस देह के लिए अनेक औक्षहणी सेनाओं का वध करा दिया। अब देह का विशेषण दे रहे हैं पारक्यस्य, देहस्य पारक्यस्य। पारक्य का अर्थ होता है दूसरे का धन, पराया। यह देह है, आत्मा का नहीं है, तो पारक्य कहते हैं। दूसरे का यह देह है, दूसरे के काम में आएगा, आत्मा के काम में नहीं। इस देह में रहकर आत्मा काम कर रहा है, लेकिन देह की ममता के कारण ये और अधम योनियों में जाएगा। तो देह तो इसका साथ दिया नहीं, देह बल्कि इसको अधम योनियों में पटकने में कारण हो गया। रियली देह आत्मा का हित नहीं करता है, आत्मा इस देह में रहकर देह को पोषता है। सिद्धांत ये, तो आत्मा तो चिन्मय है, आत्मा कोई टच कर नहीं सकता, आत्मा का कोई हित नहीं कर सकता है देह। देह को जिला रहा है, खिला रहा है, पोष रहा है कौन? आत्मा। और किस लिए? व्यर्थ। तो आत्मा को कोई लाभ नहीं है इससे। लाभ किसको है इस देह के पोषने से? सियार को, गिद्ध को, कुकुर को लाभ है, वे लोग अंत में इसे कंज्यूम करेंगे, इसके कंज्यूमर वे लोग हैं। आत्मा के काम में नहीं आएगा, इसलिए इस देह को पारक्य कहते हैं, दूसरे का, आत्मा का नहीं। हम प्रयोग करते हैं अपने शब्दों में, मेरा देह, मेरा देह, अथवा यहां तक कि मैं देह, मैं देह, लेकिन आत्मा तो देह है नहीं, और देह आत्मा का नहीं है, संबंध भी नहीं है इसके साथ। सदै आस देह, भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि यह देह दुख देने के लिए दिया गया है आत्मा को, आत्मा को दुख देने के लिए दिया गया है। तो आत्मा का तो हुआ नहीं, जो आत्मा को दुख देने वाला है उसको कैसे माना जाएगा कि आत्मा का है? वो पराया है। तो एक दिन देह छूट जाता है, आत्मा से भिन्न है, और दूसरे इसको खा जाते हैं, श्रृगाल, स्व, गिद्ध। यह देह दूसरे का है, दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा के लिए मैं इतनी औक्षहणी सेनाओं का वध करा दिया। मेरे अज्ञान की जरा, मेरे अज्ञान का विस्तार देखो, कितना बड़ा अज्ञान। इस तरह से वे बोल रहे थे बारंबार। और यह अज्ञान ऐसा है जो हृदय रूढ़म, हृदय में जमा हुआ है, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें, उसके मूल धरती में बहुत समा जाए और जल्दी निकल ना पावे कोड़ने के बाद भी, वैसे ही करें कि आप लोगों के प्रवचन से हमारे अज्ञान की जड़ उखड़ नहीं सकती। इतना भारी अज्ञान इस क्षणभंगुर नाशवान और दूसरे के धन देह के लिए मैं इतना बड़ा पाप किया, इतने लोगों का वध करा दिया। पारक के शब्द पर विचार करना चाहिए, पारक दूसरे का, यह विचार किया जाए। श्रीमद् भागवत में दो तीन जगह पर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देह किमन न दातु स्वम निषेक्तुर मातुरे वा मातुर पितुर वा बलिनो क्रेतुर अग्नि सुनो पिवा। पूछे देह है किसका, ये प्रश्न भागवत में उठाया गया है। देह किसका है, जब तक यह जीवित रहता है तब तक कई लोग कहते हैं मेरा है, ये मेरा है। कई लोगों का दाय 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 रहता है इस शरीर पर, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा। लेकिन है वास्तव में फाइनल किसका है ये? थोड़े थोड़े काल के लिए तो सब कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन यह देह किसका है? देह किम अन्न धातु स्वम, देह यह देह है क्या अन्न दाता का धन है, जो भोजन दे करके इसको पाल रहा है क्या उसका है? एक बार तो ये कहा जाएगा भाई जो इस देह को खिलाता है पोसता है पालता है उसका है ना? जो अन्न दे रहा है खिला रहा है क्या यह देह उसका है? कारण यह है कि देह जो है वो अन्न का विकार है। हम जो खाए हैं तो वास्तव में अन्न ही हमारे देह के रूप में बना हुआ है। तो कहा जाएगा कि जो भोजन दिया उसका है ये, है ना? जो भोजन दे करके शरीर को बढ़ाया पाला पोसा उसका देह है। देह किम अन्न दातु स्वम निषेक्तु, कि देह है निषेक करने वाले का है क्या? कोई कह सकता है कि देह तो बना पिता के वीर्य से, इसलिए देह का अधिकारी पिता है, उसको निषेक कहते हैं गर्भाधान करना। जिसने इस देह का बीजारोपण किया, जिसके कारण यह देह बना, तो क्या देह यह पिता का है? जिसे तुर मातुरे हुआ, कोई कह सकता है निषेक करने से क्या हुआ? असली में जिसके पेट में यह देह बना यह देह उसका है, तो मातुरे हुआ क्या यह देह माता का है? फिर प्रश्न उठता है, माता के पेट में 9-10 महीने तक यह रहा, तो माता कह सकती है, माता कहे यह पुत्र हमारा, कहती नहीं मेरा है। छोटे छोटे बच्चों से लोग पूछते हैं भोजपुरी में, के कर हवा किसके हो? आज भी सयाने लोगों को पूछते हैं किसके हो, तो व्यक्ति अपने पिता का नाम बताता है इसके है, चाहे माता का नाम बताता है। अच्छा, तो कोई कोई कहता है कि ये देह माता का है, तो मातुर पितुर वा अथवा नाना जी कह सकते हैं कि मैंने पुत्री उत्पन्न किया है और मेरी पुत्री का ये पुत्र है इसलिए मेरा है। मातु पितु हुआ, माता के पिता का है क्या? मातामह का है क्या? नाना का है क्या? नाना जी भी कह सकते हैं, बहुत इनडायरेक्ट में क्लेम कर सकते हैं, बैगेज क्लेम सब क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा शरीर है। क्रेतु और जो शरीर को खरीद लेता है, खरीद लेता है मतलब जिसकी हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं और नौकरी के बदले हमको वेतन देता है, तो क्या यह शरीर उसका है क्या? देखने में लग रहा है वो तो खरीद लिया, और मान लीजिए 2-4 हजार महीना देता है तो खरीद लिया देह है ना, परचेज कर लिया। तो कहां पर देखा मुझे याद नहीं यार, बड़ौदा में एक जगह मैं देखा, बहुत लोग जुटे हुए थे, लगभग 60-70 आदमी से ज्यादा वहां खड़े थे। तो मैं अपने गुरु भ्राता क्रतुदास जी से पूछा कि ये लोग क्यों खड़े हैं, बस पकड़ने के लिए क्या इतना सवेरे? तो कहे नहीं नहीं नहीं, ये लोग खड़े हैं, इनको लोग खरीद खरीद कर काम करने के लिए ले जाएंगे केवल 8 घंटे के लिए। इनको हायर करके ले जाएंगे, भाड़ा पर ले जाएंगे। मैं प्रथम बार जीवन में ये चीज देखा कि आदमी भी ऐसे खड़े होते हैं, जैसे टैक्सी खड़ी हो रही है या रिक्शा खड़ा हो रहा है, तो इस तरह से आदमी भी खड़े हो रहे हैं। कैसे ये तो सब जगह प्रचलित बात है, भले खड़े ना रहे, घर में से ही आ जाएं डायरेक्ट, लेकिन मैं लाइन में देखा लोगों को वहां, तो या क्रेतु क्रेतु का अर्थ है क्या, क्रेता का है जो कुछ दाम देकर के इस शरीर को खरीद लेता है और अपना काम कराता है, तो यह देह उसका है क्या। क्रेतु अग्नि सुनो पिवा, अथवा यह देखा जाता है कि शरीर मरने के बाद अंत में आग को सौंप दिया जाता है, तो क्या यह अग्नि का है। अग्नि कह सकता है कि चाहे तुम कहीं भी घूमो फिरो, लेकिन अंततः मैं तुमको खाऊंगी। अग्नि कह सकता मैं खाऊंगा। और सुनो पिवा, अथवा कभी कभी ऐसा भी सुना जाता है, देखा जाता है कि मरे हुए को कुत्ते खा रहे, तो क्या यह शरीर कुत्ता का है। सुनो पिवा, यह है किसका, ये प्रश्न तीन बार भागवत में पूछा गया है किसका शरीर है, और उत्तर कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है किसका। लेकिन यहां पर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं किसका शरीर है, ये दूसरे का है, तो दूसरे का है तो किसका, कुत्ता सियार गिद्ध आदि का है। परक के कार्य है ये, कोई भी वस्तु अंत में जिसके काम में आती है कहते हैं वह वस्तु उसकी है, अंत में जिसके काम में आवे, तो अंत में तो आत्मा को के काम में आती नहीं, आत्मा को नरक में भेज करके अपने आप राख हो जाता है देह, है ना। इस देह के लिए पाप किया, सब किया, पाप की गठरी बांध कर सिर पर नरक में चला जाता है, और ये देह तो ये यही राख हो जाता है, तो आत्मा के तो काम में आया नहीं, इतना निश्चित समझिए। अंततः जो वस्तु जिसके काम में आती है वो उसकी मानी जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, बहुत सामान मंगाते हैं इधर से उधर से उधर से, लेकिन अंत में जो उस वस्तु को खरीदता है वो ही उसका कंज्यूमर माना जाता है, वो उपभोक्ता है, और बाकी दुकानदार तो सप्लायर है कि नहीं, सप्लाई कर दे। इसी तरह से आत्मा जो है वो इस देह का सप्लायर है, वास्तव में ये पहुंचा देगा, छोड़ देगा, अंत में कुकुर आकर खा जाएंगे, ये गिद्ध आकर खा जाएंगे, वही खरीद कर ले जाएंगे बिना ड्यूटी फ्री ड्यूटी फ्री खाएंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, खा जाएंगे, है ना। अंत में जो जिसके काम में शरीर आता है वही इसका मालिक माना जाता है। इस बात पर हमें एक घटना याद आ जाती है, मैं एक बार लकड़ी खरीदने गया था मंदिर के लिए, तो एक लकड़ी देखा बहुत अच्छी थी, हम लोग उसका दाम कर रहे थे, हमारे साथ एक व्यक्ति गया था हमारे परिवार का, हमसे छोटा था वो परिवार में, चचेरा भाई, हम लकड़ी का दाम कर रहे थे, तो जब लकड़ी का दाम दुकानदार बताया तो वो हमारा चचेरा भाई कहता है, नहीं इतना दाम हम नहीं देंगे, आप बहुत दाम ज्यादा कह रहे हैं। तो बताने लगा कि ऐसी बात है कि यह लकड़ी बहुत दूर से आई है और इसलिए मुझे बहुत इसमें किराया देना पड़ा है, भाड़ा देना पड़ा है, इस कारण से लकड़ी का दाम बढ़ रहा है। तो हमारे भाई कहा कि किराया चाहे आप जो कुछ भी दिए होंगे, हम किराया क्यों देंगे, हम किराया नहीं देंगे। तो दुकानदार कहा कि लकड़ी का उपभोग आप करेंगे और किराया मैं दूंगा, आप लकड़ी ले जा रहे हैं ना अपने घर में या मंदिर में जहां लगाएंगे, तो आपके लिए मैं भाड़ा दूंगा, इसको मंगाने में जो भी भाड़ा लगा है वो आप देंगे ना, क्योंकि आप इसके भोक्ता हैं। दुकानदार की बात का सार यह है कि आप इस लकड़ी पर स्वत्व रखते हैं, मैं नहीं। मैं तो केवल कुछ दिन अगोर करके रखा, आपके लिए रखा था, आप ले जाइए। तो यहाँ रखने का है और इसमें जो भाड़ा लगा है उसका, और मेरा समय बीता है, इसलिए मैं और नफा रख करके मांग रहा हूँ। लकड़ी वाला कहा, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, क्या हम भाड़ा लगा लगा कर आपको लकड़ी दिया करे? तो वास्तव में यह देह है, हम लोग तो इसको पैकिंग कर रहे हैं, इस कपड़ा से पैकिंग किए हैं, है ना। इतना जहां 100 रुपए के कपड़े से काम चल सकता है, कुछ लोग 10-20 हजार का कपड़ा इस कुत्ते के भोजन पर डालते हैं, है ना। खूब चाहे कितना ढक करके रहिए, खूब बाईवान से यह घूमेगा भोजन कुत्ते का, या एसी रूम में रहे, कुछ भी करे, अंत में तो इसे जाना ही है। तो आत्मा साथ में लेकर जाएगा, नहीं तो छोड़ करके चला जाएगा, यहीं छूट जाएगा। और इसका बीच में नाम चाहे आप कुछ भी कीजिए, चाहे राष्ट्रपति नाम लिख दीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर लिखिए, या चाहे ब्राह्मण, चाहे कुछ भी, यहां तक कुछ वैष्णव नाम भी रख दीजिए, लेकिन है या फूड फॉर डॉग। चाहे वल्चर्स, चाहे जैकल्स, यह सियार का, कुत्ता का, गिद्ध का भोजन है। और नहीं नहीं करने दिए कुत्तों को तो राख, और नहीं तो कीड़ों का भोजन बनेगा। ये इस तरह से शरीर को मार करके छोड़ दे कोई तो कीड़े पड़ जाते हैं, खा जाते हैं कीड़े, खद 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 इस शरीर को खा जाते हैं। तो इसी शरीर को जो कुत्तों का भोजन है, इसको हम बहुत प्रकार के आभूषणों से सजाते हैं, इसका नाम रखते हैं विविध। विविध नाम बदल गया है, आधी जनसंख्या का नाम तो स्त्री है, तो सभी कुत्ते और सियार के भोजन बनते हैं, और आधे का नाम पुरुष है। पुरुषों में भी यह वह, मराठी, गुजराती, उत्तर प्रदेशी, तो यह वह, कुछ भी कीजिए। लोग मंगाते हैं, कहाँ की वस्तु है, ये आसामी है, यहाँ की है, लेकिन अंत में जो पीता है या खाता है उसका हो जाता है। नाम बीच में चाहे कुछ भी पड़ जाए, अंत में यह सियार का, कुकुर का भोजन बनेगा। तो इसको पारक्य कहते हैं। तो इस पारक्य देह के लिए मैं करोड़ों करोड़ों लोगों का वध करा दिया। हाय हाय, मेरा अज्ञान तो देखो, कितना मैं अज्ञानी, मेरा क्या स्वार्थ हुआ, कुछ नहीं, पाप लगा। पारक के देह, इस क्षण भंगुर और पराये देह को पोषने के लिए ही मनुष्य सबसे ज्यादा पाप करता है वास्तव, और इसके बाद पाप करता है अपने परिवार के लिए। और परिवार वाले क्या, वो भी पैकिंग है, वो भी सब कुत्ते के भोजन है। हमेशा इसमें पाप कर, दूसरों को दुख देना, ये करना, वो करना। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं इस तारक के देह के लिए इतनी हत्या कराया। महाराज मुस्कुंद भगवान कृष्ण की स्तुति किए हैं, तो एक श्लोक में कहते हैं, पुरा रथैर हेम पुरस्कृतैश्चरन् मतंग जैर्वा नरदेव संगीतः सायेव कालेन दुरात्येन ते कलेवरो कृमिभस्म संगीतः। कहते हैं, हे नाथ, यही शरीर पहले पूर्व काल में रथैर हेम परिष्कृतैश्चरन्, रथों पर घूमता है, और जिन रथों का परिष्कार सोने की मालाओं से किया जाता है, सोने से मढ़े हुए रथ पर राजा लोग बैठते हैं, अथवा मतंग जय, बड़े बड़े गजेंद्र पर, हाथी पर बैठते हैं और राजधानी में जुलूस निकलता है, जय बोला जाता है, महाराज की जय, राजा की जय। नाम क्या होता है? नरदेव। नरदेव मनुष्यों में भगवान या देवता है, राजा को कहते हैं। तो एक दिन नरदेव संगीत, एक दिन संज्ञा होती है राजा की, और वही राजा का देह है। दुरत्येन कालेन ते, काल स्वरूप आपके द्वारा वही देह एक दिन बीट कृमि भस्म संगीत, एक दिन उसकी संज्ञा कृमि बीट या भस्म हो जाती है। आज तक कितने राजा हुए, वो हुए क्या, उनका देह क्या हुआ? अधिकांशतः राजाओं का देह भस्म हो गया, राख हो गया, हुआ ना? ये देह को ले नहीं गए कहीं, यही छूटा देह काल के द्वारा भस्म हो गए। तो पहले नरदेव संगीत, अंत में कृमि बीट भस्म संगीत, कृमि संज्ञा भस्म संज्ञा और बीट संज्ञा हो जाती। हम लोगों के देह के साथ भी होने वाला है, तीन में से एक संज्ञा तो होगी। आज सन्यासी संज्ञा है, परम भागवताचार्य संज्ञा हो गई है, लेकिन परम भस्माचार्य भी एक दिन होगा। भस्म होना है, एक दिन यह संज्ञा और दूसरे दिन राख संज्ञा। मैं टेलीविजन पर देखा था, इंदिरा गांधी के शरीर को जलाया जा रहा था, बहुत पहले 1984 में ना, जल गए। कुछ ही देर के बाद, कुछ दिन, कुछ समय पहले उस देह का नाम था प्रधानमंत्री, और कुछ काल के बाद भस्म मंत्री। बस उनको जलाने वाला व्यक्ति जो जला रहा था वो फिर प्राइम मिनिस्टर बना, प्रधानमंत्री नाम हुआ, और वह तो पता नहीं मांस बिखर गया, वो भी भस्म मंत्री हुआ, चिथड़ा हो गया शरीर का और बोरा में कस कर ला करके जलाया। ये काल के द्वारा शरीर की दशा होती है। इसके पहले भी बहुत बहुत राजा हुए हैं, बड़े बड़े राजा, उनका शरीर हुआ क्या? किसी किसी का कृमि शरीर हुआ, किसी का भस्म हुआ और किसी का बीट हुआ। कुत्ता सियार और गिद्ध जब खाते हैं तो उनके पेट टूपी फैक्ट्री में यह शरीर बीट बनकर निकलता है। आश्चर्य है कि उसका रंग भी बदल जाता है। गिद्ध इस शरीर को खाते हैं चाहे किसी पशु के शरीर को, लेकिन चूना जैसा हगते, चूना जैसा बीट करते, उनको उजला रूपांतरण हो जाता है। हम लोगों के शरीर के साथ यह सत्य बात घटने वाली है सबके साथ, इसीलिए कम से कम अपना अध्ययन करते चलना चाहिए। इस नस्तवान और पारक के देह के लिए हम कोई भी गलत काम ना करें, नहीं तो गलत काम वो पाप तो हमारे साथ जाएगा और देह छूट जाएगा। जिसके लिए हमने पाप किया वो देह यही छूटा, परिवार के छूटने का तो कहना ही क्या है। जब देह छूट गया तो परिवार छूटा, धन छूटा, सब यही छूट गया, और इनके लिए जो पाप किए थे वो फल लेकर के चल रहे भोगने भोगेंगे। महाराज युधिष्ठिर इस तरह विलाप कर रहे हैं, समझाने वाले भगवान हैं और भगवान के बड़े बड़े भक्त लगे हुए हैं समझाने में, लेकिन उनका अज्ञान बढ़ता जा रहा है। इस एक देह के लिए, इस देह के लिए किसी जानवर का, किसी पक्षी का वध करना ही महापाप है। फिर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इसी देह के लिए मैं लाखों करोड़ लोगों को मार दिया, पारख के देह के लिए। पारख के शब्द बहुत विचारणीय है, जितना ही विचार करते जाएंगे उतना ही पता लगेगा कि अरे इस देह के साथ मेरा कोई नाता नहीं, क्यों दुख देने के लिए मिला है। तो जो हमारे शत्रु हमको दुख देने के लिए मिला है, हम क्यों उस पर बहुत कीमती वस्त्र डालेंगे, क्या जरूरत है। दुश्मन को इतना अच्छा अच्छा भोजन देना और इसमें तेल चंदन लगाना क्या क्या, ये तो अविवेकी का काम है। जो दुख देने के लिए मिला है उसको संवार रहे हैं, और संवार कौन रहा है, जिसको दुख दिया जा रहा है, आत्मा। जैसे मान लीजिए हम अपने देह में तेल लगाते हैं, तो ये कौन लगा रहा है, देह नहीं लगा रहा है वास्तव, ये आत्मा लगा रहा है, आत्मा इसकी सेवा कर रहा है। तो देह आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कर सकता भी नहीं, चाहे भी तो नहीं कर सकता। यदि आत्मा चाहे सो इस देह का उपयोग अपने लिए कर सकता है, एक क्षेत्र है वो है भगवान की भक्ति। यदि हम भगवान का जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तब यह देह आत्मा का हित करने में सक्षम होता है, और नहीं तो केवल नुकसान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आगे कहते हैं कि बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुह नमेश्या निर्यान मोक्षो यपि वर्षा युतायुत। मैं बच्चों की हत्या कराया हूं और कुछ बच्चों को दुख दिया, कुछ बच्चे तो मार दिए गए जैसे अभिमन्यु आदि, जिनको जिलाना चाहिए, जिनको पोषना चाहिए, जिनके हम पिता थे, ऐसे बच्चे मारे गए इस युद्ध में। और कुछ बच्चे जीवित हैं तो वे अपने पिता को खो चुके हैं, अपने भाई को खो चुके इस युद्ध में, तो उन बच्चों की कौन रक्षा करेगा, वे रो रहे हैं। सारा देश ऐसे अनाथ बच्चों से भर गया, तो मैंने बच्चों के साथ द्रोह किया, उनको सताया है। और कुछ बच्चे तो प्रकट मारे गए थे, जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु आदि, और विपक्ष से भी बहुत से लड़के मारे गए थे, सो बालक कहते। बालक और द्विज, द्विज का अर्थ ब्राह्मण, जैसे द्रोणाचार्य।